नमस्कार भारत, तारीख 3 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। जापान की हार के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की 70वीं वर्षगांठ पर चीन दिखा रहा है दुनिया को अपनी ताकत।
एशिया है इस समय आपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और चीन जो है अपनी मिलिट्री पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और उसका जो रोल रहा वर्ल्ड वॉर टू में और जापान का जो रोल रहा उससे वो अपने आप को अलग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है।
सरकार के एजेंडे पर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नजर।
सरकार जिस रास्ते पर चल रही है और संघ और उसके दूसरे संगठन जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उनमें कहां तक एक दूसरे की बात मान सकते हैं।
आज शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया जहां में आज बात चीनी अर्थव्यवस्था की, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अविनाश दत्त से। चीन की राजधानी बीजिंग में एक बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की याद में किया गया है। इस परेड में 12,000 चीनी और 1,000 अन्य देशों के सैनिक भाग ले रहे हैं। ये परेड अब से जरा देर में बीजिंग के थियानमेन चौक पर होगी। चीन इस मौके पर अपने नए हथियारों का प्रदर्शन करेगा, जिसमें बॉम्बर जहाज और परमाणु क्षमता से लैस नई मिसाइलें भी होंगी। इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साउथ अफ्रीका के जैकब कुमा के अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून भी मौजूद होंगे। इस आयोजन में पश्चिमी देशों का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हो रहा है। यूरोप में जहां एक तरफ तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका से शरणार्थियों का आने का सिलसिला बना हुआ है, दूसरी तरफ हंगरी में शरणार्थियों और पुलिस वालों के बीच में झड़पें हो रही हैं। कल हंगरी ने ग्रीस की तरफ से आए तथा ऑस्ट्रिया और जर्मनी जा रहे शरणार्थियों को राजधानी बुडापेस्ट के एक रेलवे स्टेशन पर रोक दिया था। हंगरी के इस कदम से शरणार्थियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की पुलिस से झड़पें हो रही हैं। गुस्साए लोग हंगरी की तुलना राष्ट्रपति असद से कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर होने वाले समझौते को संसद से पास कराने के लिए आवश्यक संख्या में सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। ओबामा के पास अब इस समझौते के समर्थन में 34 वोट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समझौते के विरोधी इस समझौते को रोकने के लिए ज़रूरी 2/3 मत संसद में नहीं जुटा सकेंगे। अमरीकी राज फिलाडेल्फिया में ईरान के साथ समझौते पर बोलते हुए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा,
Rejecting this agreement would not be sending a signal of resolve to Iran.
इस समझौते को ठुकरा देने से ईरान को हमारी दृढ़ता का संदेश नहीं जाएगा, बल्कि एक ऐसा उलझाने वाला संदेश भेजेगा जिसे दुनिया में कोई भी नहीं समझ पाएगा। दुनिया ने देखा है कि इस समझौते पर हमने 2 साल तक मोलभाव किया है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। यमन की राजधानी सना में एक शिया मस्जिद में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। मेडिकल स्टाफ का कहना है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने उस समय मस्जिद में घुसकर विस्फोट कर दिया जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद एक अन्य धमाका उस समय हुआ जब लोग मदद के लिए जमा हुए। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक नए शोध के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि इस वक्त पृथ्वी पर करीब 70 खरब पेड़ हैं। ये पहले से 7 गुना ज़्यादा बड़ा अनुमान है। शोधकर्ताओं ने इस अनुमान के लिए सैटेलाइट की तस्वीरों के अलावा ज़मीनी सर्वेक्षण का भी सहारा लिया है। ज़्यादातर पेड़ उष्णकटिबंध के आसपास मौजूद हैं। मुख्य शोधकर्ता का कहना है कि वो इस संख्या को अच्छा बुरा नहीं मानते, उनके हिसाब से केवल एक वैज्ञानिक गणना है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। जापान की हार के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आज चीन एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन कर रहा है। थियानमेन चौक पर इस भव्य परेड में 12,000 चीनी सैनिकों के मार्च के साथ साथ 40 प्रकार के 500 जंगी उपकरण और 200 विमान भी इस परेड में शामिल हैं। गगनभेदी तोपों से लेकर तमाम सैन्य साजो सामान पहली बार चीन की जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है। 17 देशों के 1,000 विदेशी सैनिक भी परेड में शिरकत कर रहे हैं। इनमें रूस, पाकिस्तान, क्यूबा और मिस्र जैसे देशों के सैनिक हैं। मध्य बीजिंग को इस परेड के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया है। यहां तक कि सैलानियों वाले इलाके, होटल, दुकान सब बंद। चिड़ियों को परेड की जगह के आकाश से दूर रखा जा सके, इसके लिए बंदरों और पालतू कबूतरों को तैनात किया गया है। परेड में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन भी शामिल हैं। जापान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के बीजिंग दौरे से नाराज है, लेकिन चीन ने जापान के विरोध की निंदा की है। जहां एक ओर चीन की राजधानी बीजिंग में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हमले की बात हो रही है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में संघर्ष टालने और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक स्तर पर हिंदू और बौद्ध पहल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संवाद का आयोजन विवेकानंद फाउंडेशन में हो रहा है। इस बार मन की बात में नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। उस समय उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं।
भारत में विश्व के कई देशों के बौद्ध परंपरा के विद्वान बौद्ध गया में आने वाले हैं और मानव जात से जुड़े हुए वैश्विक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मुझे भी उसमें निमंत्रण मिला है और मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे बौद्ध गया आने का निमंत्रण दिया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बौद्ध गया गए थे। मुझे विश्व भर के इन विद्वानों के साथ बौद्ध गया जाने का अवसर मिलने वाला है, मेरे लिए एक बहुत ही आनंद का पल है।
तो दिल्ली के इस बौद्ध सम्मेलन में कई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जापान भी शामिल है। आज के दिन इस आयोजन को एक संयोग माना जाए या फिर इससे कुछ और संकेत मिलता है, यही सवाल पूछा सुशीला ने किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हर्ष पंत से।
मुझे लगता है ऐसा कि संयोग से ज्यादा पॉलिटिकल सिग्नलिंग चल रही है, क्योंकि जो एशिया है इस समय आपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है और चीन जो है अपनी मिलिट्री पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और उसका जो रोल रहा वर्ल्ड वॉर टू में और जापान का जो रोल रहा उससे वो अपने आप को अलग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो हिंदू और बौद्ध एक परियोजना या एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक तरह से मिलिटरिस्टिक अप्रोच टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उससे अलग एक ह्यूमनिज्म जो है हिंदू और बौद्ध धर्मों का, वो अपने आप में एक मार्गदर्शक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। तो मेरे ख्याल से वहां पर भारत और जापान इस जो दो देश हैं और भी जो इस बुद्धिज्म को मानते हैं वो देश, एक तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक ऐसे समय से गुजर रही है जिसमें इन धर्मों ऐसे संस्कारों का मेरे एक नया मतलब निकल के आता है और अपने आप को अलग बता रहे हैं।
विश्व शांति के मकसद से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है ये कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये पर्पस दिखाई दे रहा है आपको?
मुझे लगता है कि यहाँ पर एक जो सॉफ्ट पावर अप्रोच है वो थोड़ा सा, ये जो देश है भारत है वो प्रोजेक्ट से कुछ समय से, अगर आप मोदी जी की फॉरेन विजिट्स को देखें तो वो बहुत एक कल्चरल और सिविलाइजेशनल जो एक भारत का परिप्रेक्ष्य रहा है और रिलीजियस जो परिप्रेक्ष्य रहा है उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसमें वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसमें बौद्ध धर्म की बात करते हैं और कहाँ क्या रोल भारत इसमें प्ले कर सकता है। तो मुझे लगता है एक तरह से वो उसी का एक एक्सटेंशन है कि भारत एक अपने को डिस्टिंक्ट पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा है जो कि चीन से और देशों से थोड़ी भिन्न है।
जी, अगर जापान और चीन की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच समुद्र क्षेत्र में को लेकर विवाद है, तो ऐसे में इसे चीन किस तरह से देखेगा?
देखिए, चीन तो काफी इस बात से प्रभावित है और काफी नर्वस भी है कि भारत और जापान जो एशिया की दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं वो कुछ समय से एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनका फॉरेन पॉलिसी है वो काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है चीन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये तो काफी समय से चल रहा है और अगर आप जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों का स्ट्रेटेजिक अप्रोच देखें और जिस तरह भारत ने जापान को एक प्रायोरिटी बनाया, जापान ने हिंदुस्तान को प्रायोरिटी बनाया, तो मुझे लगता है वहां पर चीन थोड़ा सा से नर्वस है और चीन ये जानता है कि अगर ये दो शक्तियां आपस में साथ काम करने को तैयार हो जाती हैं तो वो चीन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।
तो भारत में हो रहा है बौद्ध सम्मेलन, विश्लेषण कर रहे थे किंग्स कॉलेज में प्रोफेसर हर्ष पंत। दिल्ली में शुरू हुई पहली 3 दिवसीय समन्वय बैठक में संघ, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया है। बताया जाता है कि इस बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह से पूछा कि बिहार चुनाव से पहले हो रही इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए।
इस तरह की बैठक साल में 2 बार होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल, तो उम्मीद है कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री शामिल होंगे। RSS के जो विभिन्न संगठन हैं उनकी बैठक में कोशिश ये होती है कि उनकी जो विचारधारा है उसके अनुरूप विभिन्न संगठनों में समन्वय हो। अब उसमें सरकार भी शामिल हो गई। सरकार जिस रास्ते पर चल रही है और संघ और उसके दूसरे संगठन जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनमें कहाँ तक समन्वय हो सकता है, कहाँ तक एक दूसरे की बात मान सकते हैं। देखिए, वाजपेयी सरकार के समय एक दिक्कत आई थी, संघ को लगा था कि अब हमारी सरकार आई है, हम जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनको पता चला कि ऐसा संभव नहीं है। वाजपेयी ने भी उन लोगों को बुलाकर ये समझाया कि सरकार संविधान के दायरे में काम करती है, आप पर उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जवाबदेही संसद के प्रति है, आम लोगों के प्रति है। तो चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियां और उसके उसके अधिकार और कर्तव्य अलग होते हैं। उस दृष्टि से देखें तो इस बैठक में चिंता की बात संघ के लिए होगी कि 1.25 साल में ही सरकार की जो लोकप्रियता है वो कम होने लगी है, साथ ही प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर भी असर पड़ा है।
जी, वहीं सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, या लैंड बिल को लेकर गतिरोध चल रहा हो, या फिर पाटीदार आंदोलन हो, तो ऐसे में इन मुद्दों पर आरएसएस का कितना हस्तक्षेप देखते हैं और कितना समन्वय दोनों बना पाएंगे?
देखिए, हस्तक्षेप तो जहाँ तक नीतिगत फैसले हैं उनमें हमेशा रहा है, भाजपा में भी रहा है, और भाजपा की जब भी सरकार होती है, राज्य में हो केंद्र में हो, उसमें एक दखल आरएसएस का रहता है। अब वो निर्भर करता है समन्वय पर, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका जो मुखिया है उससे संघ के विभिन्न संगठनों का समन्वय कैसा है। वाजपेयी सरकार के समय का जो अनुभव है उससे सीख लेते हुए नरेंद्र मोदी ने इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था कर दी है। संघ से जुड़े दो लोगों को इस काम में लगाया गया है कि संघ के अनुषांगिक संगठन जो हैं उनके जो काम है वो रुके नहीं, तो दोनों के समन्वय से दोनों का फायदा हो इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन का मामला पहले दिन बैठक में उठा और संघ इस बात से चिंतित है कि ये मामला लंबा खींच रहा है, इससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है, पहले दिन चर्चा नहीं हुई लेकिन इस पर उम्मीद है कि जरूर चर्चा होगी, वो है गुजरात में हार्दिक पटेल का जो आंदोलन है, पाटीदार अनामत आंदोलन, वो उसको लेकर निश्चित रूप से सरकार भी चिंतित है, प्रधानमंत्री भी हैं और संघ भी है, कि उनको बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा कि ये इतने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन उठकर खड़ा होगा। और उससे भी बुरा ये हुआ कि जो पुलिस एक्शन हुआ उसकी वजह से सरकार और पार्टी दोनों की बदनामी हुई। कोशिश सारी ये है कि ऐसे मुद्दे उठाए जाएं, ऐसे मुद्दों पर सरकार काम करे जिससे जो बड़ा तबका है आबादी का, युवा, उसके जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो, क्योंकि संघ और सरकार दोनों को लग रहा है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, ये डिजास्टर में बदल सकता है अगर रोजगार की व्यवस्था तेजी से नहीं की गई तो।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। भारत में कल करीब 10 मजदूर संगठनों की एक दिन की हड़ताल का असर देश के कई हिस्सों में देखा गया। केरल में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ तो पश्चिम बंगाल में झड़पें हुईं। ये मजदूर कानूनों में प्रस्तावित बदलावों और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। एक रिपोर्ट के साथ हैं सुबैर अहमद।
कल भारत बंद में कई मजदूर संगठनों के 15 करोड़ मजदूरों ने भाग लिया। जगह जगह मजदूरों ने नारे भी लगाए। बंद का आयोजन करने वाले यूनियन लीडरों के अनुसार भारत बंद के दौरान बुनियादी सेवाएं प्रभावित हुईं। पश्चिम बंगाल में हड़ताल का आंशिक असर देखा गया, जहां लोकल ट्रेन और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों की विभिन्न यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता का दावा था कि हड़ताल काफी हद तक कामयाब रही।
सब लोगों ने मिलकर उसमें मतलब पार्टिसिपेट किया। मैं ये नहीं क्लेम करता कि 100% सारे ट्रक्स ऑफ रोड हैं। ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की थी और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो TDS है, जो ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर अब तक 0% लेवी था, अब उसको 2% लेवी कर दिया है TDS ट्रांसपोर्टर के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। आपको रिटर्न चाहिए, रिटर्न हम फाइल पहले भी करते थे लेकिन वो 0% तो होती थी।
लेकिन आम जनता बंद से खुश नहीं थी। कुछ लोगों ने हड़ताल पर अपनी प्रतिक्रियाएं यूं दी।
जायज नजायज का तो मालूम नहीं है, डेमोक्रेसी, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट बंद करके, रास्ते बंद करके, ट्रांसपोर्टेशन बंद करके, बैंक्स बंद करके, दिस इज नॉट द राइट वे।
ये बिल्कुल नजायज है, ऐसे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन्हीं बातों पे चलता रहे, इतनी वायलेंस हो रही है, इतनी बर्बादी हो रही है, पैसे की भी बर्बादी, बैंकों का बंद होना भी बिल्कुल नुकसानदेह है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए।
वो अपने ट्रेड लेवल पे अगर स्ट्राइक करते हैं तो वो तो उनके लेवल पे, अगर उनके मांगे हैं तो सही है, अगर वो बिजनेस लेवल पे बात करता है तो वो जायज नहीं है। सभी का बिजनेस सफर होता है, लोग सफर करते हैं।
मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ, ज्यादा परेशानी है, कहीं ऑटो नहीं चल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, सब आदमी बहुत परेशान है हड़ताल की वजह से। मालूम था नहीं, निकल गए हैं, बहुत दूर से पैदल चल रहे हैं।
हम तो औरंगाबाद से आ रहे थे, ट्रेन से उतरे हैं, अभी देखे ना ऑटो हड़ताल है, बहुत परेशानी में हम लोग पड़ गए हैं।
भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर दूसरे कई बैंकों की यूनियन भी हड़ताल में शामिल रही। हड़ताल करने वाले संगठनों ने सरकार को 12 मांगों की सूची सौंपी, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम मजदूरी को 15,000 रुपये करने की मांग की गई है। दूसरी मांगों में प्रमुख रूप से रेलवे और रक्षा में विदेशी पूंजी निवेश यानी FDI पर रोक, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, बिना सर्वसम्मति से श्रम कानून में बदलाव पर रोक और कामगारों के पेंशन में बढ़ोतरी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ ने मांगों का समर्थन जरूर किया, लेकिन खुद को हड़ताल से अलग रखा। इसके अनुसार सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए समय दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी हड़ताल का विरोध किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वो मजदूर संगठनों से मांगों पर वार्ता जारी रखेगी। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुनझुनवाला से संपर्क साधा और पूछा इन मजदूर संगठनों की जो मांग है वो कितनी जायज है।
मेरे हिसाब से मांग मूलतः जायज नहीं है, क्योंकि विषय ये है कि ये संगठित क्षेत्र के कर्मियों की अधिकाधिक फैसिलिटीज की इनकी बेसिकली मांग है कि पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट ना किया जाए, इनके ऊपर लेबर कानून सख्ती से लागू रहे और इस प्रकार की इनकी फैसिलिटीज बढ़ती रहे, उसकी मांग है। इससे देश के आम आदमी को राहत नहीं मिलती। अपने यहाँ एक कंसेप्ट है लेबर एरिस्टोक्रेसी की, कि संभ्रांत श्रमिक क्लास, तो ये संभ्रांत श्रमिक क्लास की डिमांड है और ये मूलतः मेरे हिसाब से उचित।
एक दिन की हड़ताल का क्या मतलब है, या इसे एक तरह से सांकेतिक देखा जाए?
नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप है। अब ये असल में इस प्रकार की सिचुएशन में जो लीडर्स होते हैं वो नब्ज देखना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने लोगों की, अपने सदस्यों, तो उन्होंने एक दिन के हड़ताल देख करके ये समझना चाहा होगा कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितने लोग हमारे साथ आएंगे। केरल और पश्चिम बंगाल में खासा असर आया, दूसरी जगह नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी है कि और जगह इनकी पकड़ नहीं बन रही। अब ये इनके नेताओं के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इसको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से ये जो रिजल्ट है उसके अनुसार इनके लिए आगे ज्यादा लंबी स्ट्राइक करना कठिन होगा।
पश्चिम बंगाल में जिस तरह से झड़पें देखने को मिली और केरल में अच्छा खासा असर भी हुआ, आपको लगता है कि एक तरह से सरकार पर ये एक दबाव डालने का तरीका है?
दबाव डालने का तो तरीका है ही, लेकिन सवाल ये, देखिए जो ये हिंसक घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं या हुई हैं, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो आज पॉलिटिक्स है उसमें इस प्रकार की वारदातें बड़ी सामान्य सी बात हो गई है, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। मेन इशू ये है कि ये जो श्रमिक हैं, जो संगठित श्रमिक हैं, ये अपने मांगों को बढ़ाना चाहते हैं और क्योंकि सरकार इनकी बात नहीं मान रही है तो ये अब स्ट्राइक का रास्ता अपना रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइक को लंबा करते हैं, तो अगर सफल होगी स्ट्राइक तो इनको कुछ मिलेगा, नहीं तो ये और ज्यादा नुकसान में खाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि इनको बहुत ज्यादा जनता का समर्थन है और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बैकट्रैक। इन्होंने साथ साथ दिखाने के लिए कि हम केवल संगठित श्रमिकों की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जैसे एक मुद्दा जोड़ दिया अपनी मांगों में कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, मिनिमम वेज जो है, जो घरेलू श्रमिक होते हैं डोमेस्टिक वर्कर, उनकी मिनिमम वेज 15,000 रुपया होना चाहिए, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की मांगे उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो है पूरे देश के 60 करोड़ अडल्ट को सोशल सिक्योरिटी कवर देगी कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ? तो इस प्रकार की मांगे करना दिखाने के लिए अच्छा है।
हड़ताली कर्मियों की मांगे कितनी जायज हैं और उनमें क्या कुछ हो सकता है, विश्लेषण कर रहे थे आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुनझुनवाला। और अब कार्यक्रम में यहीं अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। अविनाश अखबार पढ़ चुके हैं, अविनाश क्या कह रहे हैं अखबार? हड़ताल हड़ताल हड़ताल
हड़ताल का जिक्र तो है ही, काफ़ी ज़्यादा हड़ताल का जिक्र है। हरी अखबार में कहीं मारपीट की खबरें हैं कि कितना हुआ, कहाँ, कलकत्ता में क्या हुआ। और मेरे सामने जैसे ये अमर उजाला है, इसमें लिखा हुआ है देशव्यापी हड़ताल से 25,000 करोड़ का नुकसान, 15 करोड़ कर्मचारी शामिल हुए। और ये लिखा है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। लेकिन इसके अलावा जो एक और खबर चारों तरफ लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर है वो ये है कि संघ का संदेश, सत्ता और संगठन में अविश्वास बढ़ा, फेर बदल करें। यानी ये जो सरकार के मंत्रियों, सरकार के बीच में और आरएसएस के लोगों के बीच में जो बैठक हो रही है उसके बारे में ये खबरें हैं और ये चारों तरफ हैं, इसका कहीं मतलब कोई वो नहीं है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में इसका जिक्र कर रहा हूँ तो एक भाजपा का तो एक रोचक खबर छपी है कि पार्टी चीफ सेंड्स आउट लिस्ट ऑन हाउ टू काउंटर नेगेटिव व्यूज, कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने लोगों को बताया है 12 पन्ने का खत लिख के कि भाई सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक राय है, जो नकारात्मक समाचार आते हैं उससे कैसे निपटें। शाह कहते हैं कि भैया सबसे अच्छा तो एक तो खूब पढ़ लिख के जाओ, दूसरा जो है जर्नलिस्टों यानी पत्रकारों और संपादकों से बढ़िया मीठे मीठे संबंध रखो और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करो और बहस होने लगे तो कोशिश करो कि अच्छी बातों की जो पार्टी की अच्छी बातें हैं उनकी तरफ किसी तरह से खींच के आ जाए मामला।
यानी कि एक तरह की नीति बनाई जा रही है जिसमें कि अगर कड़े सवाल पूछे जाएं तो उसका जवाब कैसे दिया जाए।
जी, इसके अलावा इसी के नीचे एक और खबर है इंडियन एक्सप्रेस में ही कि ब्लेमिंग फॉल्ट इन स्टार्स, गुजरात कांग्रेस टू रिलोकेट चीफ्स ऑफिस, पार्टी जो है वहां दशकों से सत्ता के बाहर है तो अब पार्टी को लग रहा है कि यार और कुछ बात हो ना हो, ये हो सकता है कि वास्तु का खराब वास्तु की वजह से हो रहा है,
वास्तु दोष।
जी, तो वहाँ पे जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका दफ्तर भारत सिंह सोलंकी, माधव सिंह सोलंकी जो कि पूर्व गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे ये केंद्रीय मंत्री भी थे, इन्होंने पार्टी का ऑफिस ही दूसरी जगह ले गए हैं
ताकि दिशा अगर बेहतर हो तो,
ताकि शायद उनका कहना है कि शायद यही टोटका चल जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। अब बात करेंगे विशेष कार्यक्रम की। दुनिया भर के बाजार चीन की अर्थव्यवस्था में आई मंदी की चपेट में आकर मौंधे मुंह गिरे हैं। बीते कुछ सालों से चीन लगातार प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो फिर अचानक ये मंदी का दौर कैसे आ गया? क्या चीनी अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन खत्म हो चले हैं? इस मंदी का दुनिया के बाकी देशों के लिए क्या मायने हैं? निखिल रंजन आज दुनिया जहां में इसी की चर्चा कर रहे हैं।
दुनिया जहां, लगातार चौकड़ी भरते चीन के कदम क्या लड़खड़ाए, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और दक्षिण एशिया तक हर जगह बाजारों ने मंदी की आंच को महसूस किया और निवेशकों के सैकड़ों अरब रुपए एक झटके में हवा हो गए। मुद्रा के अवमूल्यन के साथ ही शेयर बाजारों में पैसा झोंक कर चीन ने अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की तो मामला और बिगड़ गया। जिस चीन से अमेरिका को चुनौती मिल रही थी, जो जापान को धकेल कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, दुनिया के बाजार जिसके माल से भरे पड़े हैं, जिसके कदमों के निशान धरती के कोने कोने में दिख रहे हैं, वही चीन अचानक सहम गया है। बीजिंग में भारतीय पत्रकार सैबल दास गुप्ता।
जो हुआ है वो मार्केट क्रैश के बाद पता चल रहा है। 18 महीने तक मार्केट बढ़ता ही रहा और 5000 के आसपास इंडेक्स था, वो क्रश होके 32% गिरा और $4 trillion गायब हो गया। उसके बाद सरकार ने इंटरेस्ट रेट को दो बार कट किया, बैंक के रिजर्व रेशियो दो बार कट किए, दुनिया भर के कंपनीज को आदेश दिया गया कि तुम स्टॉक बेचोगे नहीं, सिर्फ खरीदोगे। उसके बाद वो अरेस्ट करने लगे। मार्केट ने कुछ हद तक तो सरकार का डर या सरकार ने जो कैरेट्स दिए उसका फायदा लिया, लेकिन फिर मार्केट गिरने लगा।
बीते दो दशकों में दुनिया ने चीन को सिर्फ बढ़ते देखा है। बाजार से लेकर खेल के मैदान और पानी से लेकर जंगल आकाश तक में सस्ते सामान, मूलभूत निर्माण और अमरीकी डॉलर का बड़ा सा झोला लिए चीन हर कोने में अपने लिए जगह बना रहा है। जिन देशों से किसी की बातचीत तक नहीं, चीन उनका भी दोस्त है। ऐसे में चीन की मुश्किल कई देशों को चौंका रही है, लेकिन ज्यादा परेशान वो हैं जो उसके ज्यादा पास हैं। आर्थिक मामलों के जानकार एमके वेणु।
खासकर आप देखिए, एशियाई जो देश है वो चीन से बहुत जुड़े हुए हैं। चीन की इकोनॉमी थोड़ी अगर स्लो हो जाए 1-2% तो कपूर में रिसेशन हो गया।
बीजिंग में ओलंपिक खेल कराकर चीन ने खूब वाहवाही लूटी। सफल आयोजन के साथ ही चीनी खिलाड़ियों ने पदक तालिका में उसे दूसरे नंबर पर पहुंचाकर उसका कद इतना ऊंचा कर दिया कि अमरीका तक को अपने कंधे उचकाने की नौबत आ गई। पर अब वही आयोजन अपने बोझ का एहसास दिला रहा है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर मनोज पंत।
जब तक चाइना के ओलंपिक्स चल रहे थे तो चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पूरी दुनिया से आयरन, स्टील, कोल सब खरीद रहा था। अब 2008 के बाद अब अंदर की डिमांड तो कम हो गई, अब हम बाहर की डिमांड जनरेट करने और उन्होंने अपना येन को डिवैल्यू करना शुरू किया था। 2011 में फिर यूएसए ने इस पे अपोज किया था, अब 2015 में फिर वही कहानी शुरू हो गई है। चाइना का अंदर का जो डिमांड है, जो आर्टिफिशियली स्टिमुलेट किया था ओलंपिक्स ने, उसके लिए बदले उनको कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। वो एक्सपोर्ट को कम करना नहीं चाहते और वो चाहते हैं दुनिया उनके लिए चाइनीज गुड्स खरीदे, लेकिन चाइना में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि अब दुनिया में तो डिमांड है नहीं। अब चाइना में डिमांड कैसे स्टिमुलेट किया जाए, इसका एक ही तरीका है कि चाइनीज को अपनी रिजर्व्स को कम करना है बाय बाइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
बात सिर्फ ओलंपिक की नहीं है, दुनिया के बाजारों तक अपना माल पहुंचाने के लिए चीन ने अपने देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर पानी की तरह पैसा बहाया है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि कम कीमत के बावजूद उसे खरीदार नहीं मिल रहे। चीन की ऐसी हालत इसलिए भी हुई क्योंकि चीन की सरकार और कंपनियों के पास तो बहुत धन है, लेकिन जनता की जेब खाली है। उनके पास तो बस उतना ही पैसा है जिससे कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। उस पर भी मांग घटने के कारण नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। चीन में इस वक्त बेरोजगारी बहुत है। सैबल दास गुप्ता,
चीन का जब ना जो विकास हुआ और इतना जो पैसा चीन ने कमाया उसका भी लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की तनख्वाह तो बढ़ती ही नहीं है यहाँ। चीन की खूबी यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के चलते ही इन्होंने इन्फ्लेशन पे बिल्कुल कब्जा करके रखा है। वही ये फैक्ट्रियों की लोगों को एम्प्लॉय करने की क्षमता कम हो रही है, तो सारी की सारी फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है, लेकिन उनके वो डिविजन जो विदेश के निर्यात के लिए माल पैदा करते हैं वो सब यूनिट्स बंद हो रहे हैं।
चीन की मंदी से दुनिया सहमी हुई है, लेकिन भारत आश्वस्त है। बाजार में कुछ उठापटक जरूर हो रही है, लेकिन वो बदहवासी नहीं दिख रही जो दूसरे देशों में है। कारण साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था चीन पर उतनी निर्भर नहीं जितना कि बाकी देश। एक वजह और है जो उसकी उम्मीदों को बनाए हुए है। जानकार मान रहे हैं कि भारत चाहे तो इस संकट को एक बढ़िया मौके में बदल सकता है। प्रोफेसर मनोज पंत,
कि डिमांड कौन करता है, लोग ही करते हैं। मशीन जो लोग बनाते हैं वो कंजम्पशन डिमांड तो नहीं करते ना, मशीन ना आटा खाते हैं ना चीजें खरीदते हैं। तो इतने ज्यादा मास ऑफ पीपल जहां पर एक टाइम पे काफी डिमांड जनरेट हुआ, इंडिया के सिवाय कहीं नहीं है। ये मौका इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया बी द नेक्स्ट प्रोडक्शन प्लेस, लेकिन यहाँ पर सबसे हमारी बैकवर्ड पोजिशन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रोड ब्रिजेस एटसेट्रा इज नंबर वन फॉर इंडिया, अगर वो चाइना की जगह लेना चाहते हैं।
हालांकि चीन ने जिस मजबूती के साथ अपने पैर फैलाए हैं और अपने संसाधनों को समृद्ध किया है, उसके दम पर वो खुद को संभाल लेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं। जरूरत होगी तो बस नीतियों में थोड़ा बहुत फेर बदल और जरा सा धैर्य दिखाने की। एमके वेणु,
ओवरऑल आप चीन की इकोनॉमी को देखिए, आज $10 trillion की इकोनॉमी है और उनके पास $3.7 trillion इनके पास रिजर्व्स है, इनके पास पैसा काफी है, इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं ये लोग। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर थोड़ा स्ट्रेस आया तो बैंक को रिकैपिटलाइज करते हैं इनकी और वो अपने रिजर्व्स को यूज करते हैं। तो चीन के पास बेसिक स्ट्रेंथ बहुत है इकोनॉमी में। अभी जो क्राइसिस जो चल रहा है उससे उनको उभरने में भी एक आध साल लगेगा, मगर ऐसा कोई अंदेशा नहीं कि इकोनॉमी उनकी बैठेगी।
चीन ने विकास का जो मॉडल चुना उसमें लोगों के ऊपर तंत्र को अहमियत दी और उसका नतीजा इतनी जल्दी दिखने लगा है। विकास के लिए लोगों की अनदेखी करने वालों को इससे जरूर सबक लेना चाहिए। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और अब इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार।
BBC समाचार। चीन की राजधानी बीजिंग में एक बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की याद में किया गया है। इस परेड में 12,000 चीनी सैनिकों के अलावा 1,000 अन्य देशों के सैनिक भाग ले रहे हैं। यूरोप में जहां एक तरफ तो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका से शरणार्थियों के आने का सिलसिला बना हुआ है, दूसरी तरफ हंगरी से शरणार्थियों और पुलिस वालों के बीच झड़पों की खबरें भी बढ़ रही हैं। यमन की राजधानी सना में एक शिया मस्जिद में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। एक घंटे बाद दूसरी सभा यानी कि विश्व भारती में आपसे हम फिर मुखातिब होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।